तारीख 15 अक्टूबर दिन मंगलवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत के साथ मैं हूँ मानसी दास। अमेरिका ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध, कहा सीरिया पर हमले बंद करें।
We have sanctioned three of the ministers, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Minister of Energy.
कश्मीर में पाबंदियों के 70 दिन बाद बहाल हुई मोबाइल सेवाएं।
हम तो बहुत खुश हैं, अपनों से बातें कर रहे हैं।
तो हाँ, खुशी होता है जब ऐसे कनेक्शन या रिस्टोर होता है तो।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सुनवाएंगे उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से।
गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सुभाष बोस राष्ट्रवादी नेता हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से। तुर्की की सीरिया में कार्रवाई छठे दिन भी जारी है। तुर्की सेना कुर्दों के नियंत्रण वाले मानबिस शहर की ओर पहुंच रही है। सीरिया का कहना है कि तुर्की हमले से मानबिस का बचाव करने के लिए कुर्द के साथ किए गए समझौते के तहत उसकी सेना भी शहर में प्रवेश कर रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दों पर हमले को लेकर तुर्की के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों को तब तक हटाया जाएगा जब तक कि वो सीरिया में अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता। माइक पेंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से ये भी कहा कि सीरिया पर हमला करने के लिए अमेरिका ने तुर्की को हरी झंडी बिल्कुल नहीं दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्तर सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई थी। विश्लेषकों का कहना था कि सैनिकों को वापस बुलाने के इस फैसले ने तुर्की के लिए हमले की राह आसान कर दी है। कुर्द इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के मुख्य सहयोगी रहे हैं। कैटलोनिया के दंगारोधी पुलिस दस्ते की बार्सिलोना हवाई अड्डे पर उड़ानों को बाधित कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ कई झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, रबर बुलेट भी चलाई गई हैं। कई जगहों से आगजनी की भी खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारी कैटलोनिया के स्वतंत्रता समर्थक 9 नेताओं को स्पेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल की लंबी सजा देने के फैसले से नाराज हैं। उन्हें 2 साल पहले कैटलोनिया की आज़ादी की एक नाकाम कोशिश के मामले में उनकी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया गया है। उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए और जिसके बाद उन्हें जेल की सजा हुई थी। इससे पहले भी हजारों प्रदर्शनकारी सेंट्रल बार्सिलोना में इकट्ठा हुए थे। आयोजकों ने मंगलवार को उन्हें फिर से इकट्ठा होने की अपील की है। कैटलोनिया के पूर्व राष्ट्रपति पुजीमेंट ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सजा पाने वालों ने कुछ भी अवैध नहीं किया।
The Supreme Court ruling against the members of the government,
सरकार के और संसद के लोगों को ही कैटलोनिया के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी कैटलोनिया के नागरिकों के खिलाफ दमन और बदले की नीति ये दिखाई देती है। जो लोग लोकतांत्रिक तरीकों से सिर्फ अपनी मांगे रख रहे थे उन्हें दोषी ठहराते हुए वे असल में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं जिन्होंने पहली बार अक्टूबर 2017 में जनमत संग्रह में भाग लिया था। ये थे पूर्व राष्ट्रपति के शब्द। गुयाना में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रपति अल्फा कोंडे द्वारा तीसरे कार्यकाल के लिए संभावित योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हुई है। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों ने कई अन्य लोगों को घायल भी कर दिया है। विपक्षी नेताओं को भी रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने ही कोंडे ने कहा था कि वो एक जनमत संग्रह कराने की योजना कर रहे हैं जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि वो संविधान बदलना चाहते हैं ताकि वो फिर से चुनाव में खड़े हो सकें। डॉक्टर फेहा मिलिमेनो विपक्षी लिबरल पार्टी के नेता हैं और उस गठबंधन का हिस्सा हैं जिसने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उन्होंने कहा,
We are very, very sad seeing young people being killed.
युवा लोगों की मौत से हम बहुत दुखी हैं, लेकिन देखिए ये देश किस दौर से गुजर रहा है। अगर हम इससे नहीं लड़ते तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। यदि हम उन लोगों के हाथ में सत्ता दे देंगे तो हम तानाशाही का सामना कर सकते हैं और ये देश फिर से दिवालिया हो जाएगा और यहाँ ये पहले भी हुआ है। ये थे विपक्षी लिबरल पार्टी के नेता फेहा मिलिमोनो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीका ने तुर्की से उत्तरी सीरिया में अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए कहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि वो तुर्की पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और इससे संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जल्द जारी किया जाएगा। तुर्की सीरिया के उत्तर में एक सेफ जोन बनाना चाहता है, जहां वो सीरिया से तुर्की में आए लोगों को वापस बसाना चाहता है। इस कारण वो इस इलाके पर कब्जा जमाए हुए कुर्द बलों पर हमले कर रहा है। पूरी रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि श्रीवास्तव।
ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमरीका ने कथित इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह हरा दिया है और अब वो चाहते हैं कि कुर्दों की सुरक्षा सीरियाई सरकार करे। उन्होंने उत्तर पूर्वी सीरिया में सैन्य अभियान चला रहे तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में ट्रंप ने कहा, अमेरिका तुर्की स्टील पर भी टैरिफ बढ़ाएगा और साथ ही व्यापार सौदे पर भी बातचीत बंद कर देगा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि ट्रंप ने तत्काल संघर्ष विराम की मांग करते हुए अपने तुर्की समकक्ष को फोन भी किया था। व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिका के कोषाध्यक्ष स्टीव म्यूचिन ने इन प्रतिबंधों का विवरण दिया है।
We have sanctioned three of the ministers, the Minister of Defense,
हमने तुर्की के तीन मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री। साथ ही हमने तुर्की के रक्षा और ऊर्जा मंत्रालय पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रतिबंध बहुत ही कड़े हैं, लेकिन वो कुछ शर्तों पे ये प्रतिबंध हटाने के लिए भी तैयार हैं। इधर तुर्की की सीरिया में सैन्य कार्रवाई छठे दिन भी जारी है। तुर्की सेना कुर्दों के नियंत्रण वाले मानबिस शहर की ओर बढ़ रही है। सीरिया का कहना है कि तुर्की हमले से मानबिस को बचाने के लिए कुर्द के साथ किए गए समझौते के तहत उसकी सेना भी शहर के अंदर पहुंच रही है। तुर्की के बढ़ते सैन्य अभियान के बीच कुर्द बलों और सीरियाई सरकार के बीच आपसी मदद के लिए सहमति बन गई है। सीरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार रूस समर्थित सेना ने तुर्की की सीमा से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में ताल तामेर शहर में भी प्रवेश कर लिया है। सरकारी मीडिया के अनुसार सेना ने मानबिस शहर में भी प्रवेश कर लिया है, जहां तुर्की सीरिया से विस्थापित हुए लोगों को बसाने के लिए एक सेफ जोन बनाना चाहता है। रविवार को अमरीका ने सीरिया में मौजूद अपने सभी सैनिकों को बाहर निकालने की घोषणा की थी, जिसके बाद सीरियाई सरकार का ये फैसला है। तुर्की पर सैन्य अभियान रोकने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दोआन ने कहा कि ये अभियान जारी रहेगा। सोमवार को उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की पीछे नहीं हटेगा, इस पर कोई क्या चाहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
रिपोर्ट सुना रही थी सृष्टि श्रीवास्तव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से पुतिन का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। इस दौरे का मकसद आपसी रिश्तों को मजबूत करना है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका सीरिया से अपने सैनिक वापस बुला रहा है। अब से कुछ साल पहले तक रूस समर्थित सीरिया की बशर अल असद सरकार से लड़ रहे कुर्द लड़ाकों का अमरीका सहयोगी रहा है। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर एके महापात्र से संपर्क साधा और पूछा कि क्या रूस मध्य पूर्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, ये तो देखिए, उनका तो एक मिशन जो आने का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके प्रभाव बढ़ने का चांसेस अभी है, कभी इतना ज्यादा नहीं था जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ। क्योंकि अभी आप तो जैसे देखेंगे कि अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रंप ने ये डिसाइड किया सडनली कि सीरिया से अपना फोर्सेस को विथड्रॉ करना, और इससे पहले इराक से भी प्रेसिडेंट ओबामा ने विथड्रॉ कर दिया। एक ये इम्प्रेशन जाता है कि जो अमेरिकन आर ऑन रिट्रीट, कि वो जिस तरीके से अपना वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस रखते थे वहाँ पे और जिस तरीके से वहाँ के जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस आज के दिन में वो कम हो रहा है। तो इसको देखते हैं कि वहाँ पे जो रीजनल पावर थे, जैसे चार बड़ी बड़ी है, जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान एंड इसराइल, तो ये चारों अपने ही कहीं ना कहीं कंपटीशन में लगे हुए हैं कि उस जो वैक्यूम हो रहा है पावर वैक्यूम में वो अपने कैसे फिल अप करें। उसके मौका पे रासा जिसका अपना एक जमाने में इंस्टेंस होता था कोल्डर पीरियड में, ये वर्चुअली वहां पे खत्म हो गया था। ये सिचुएशन को देखते हुए रासा ने एक प्रो एक्टिव वेस्ट एशिया पॉलिसी एडॉप्ट किया। पहले उनके इन्वॉल्वमेंट सीरिया में रहा, जबकि वहां की जो शासन था तो असद रेजिम जो था वो जब मतलब कलाप्स होने के चांसेस आए उसमें रासा ने वहाँ इन्वॉल्व थे, वो किसी भी तरह जब असद रेजिम को वहाँ प्रोटेक्ट किए। आपने आज का डेट में सीरिया के अंदर रासा के इंटरेस्ट काफी जबरदस्त है, काफी ज्यादा है। रासा ने एक डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन किया, तो मिलिट्री इंटरवेंशन मतलब मिलिटरीली इंटरवीन किया इन सपोर्ट ऑफ द रेजिम। तो ये पहले बार रासा ने ये देखते हुए कि वेस्ट एशिया में आपने सबसे बड़ी ट्रेडिशनल अलाय जो है वो है सीरिया को सपोर्ट किया मिलिटरीली, लॉजिस्टिकली एंड पॉलिटिकली, ऐसे कभी ऐसे नहीं होता। ये देखते हुए मुझे लगता है रासा अपने किसी भी तरह वेस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना चाहता है।
दूसरी बात जो ये दिखती है कि ईरान जैसा कि सीरिया में रूस का साथी था, तो ईरान के साथ सऊदी अरब के अच्छे रिश्ते हैं नहीं, और आजकल तो ज्यादा ही तनाव बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जब ये पेशकश करते हैं, जब ये कहते हैं पुतिन कि हम दोनों के बीच में रिश्तों को ठीक करने के लिए मैं एक मीडिएशन कर सकता हूँ, कितनी संभावना लगती है आपको कि कितना?
ये तो उनका प्रयास है, लेकिन पहले भी दूसरे थर्ड पार्टी किए हैं, अमेरिका ने किया है, अभी रशिया कर रहा है, करते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों में किसी भी तरह एक कॉम्प्रोमाइज होने का। आप पूछेंगे क्यों? इसमें दो कारण है। एक सेक्टेरियन डिवाइड है दोनों के अंदर, सिया सुन्नी वाला मामला है, ये इतना जल्दी उसमें कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। दूसरे बात है कि दोनों ही एक कोशिश कर रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया के अंदर में दोनों से एक पावर अपना बढ़े। अब उनकी आज का डेट में थ्रेटर जो है वो है यमन, तो कहीं ना कहीं एक ट्रूस हो सकता है, कहीं ना कहीं एक युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन दोनों में कोई रेपोर्चमा हो लॉन्ग टर्म में, ये तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है।
कुर्द जो हैं उनका ये कहना है कि हमें अबेंडन कर दिया, हमें इस्तेमाल कर दिया दो दो तीन तीन बार अमेरिका ने। तो क्या इससे जो मिडिल ईस्ट में सहयोगी हैं अमेरिका के, क्या उनका भरोसा कम हुआ है? जैसे सऊदी अरेबिया है, क्या उसका भरोसा कम हुआ है अमेरिका पे?
देखिए, वो तो मैं आपको ये कहना, जब एक पावर वैक्यूम होता है, रीजनल पावर होते हैं, वो कोशिश करते हैं दूसरा एक्सटर्नल पावर के सपोर्ट लेने के लिए। कभी भी आप देखोगे सऊदी अरेबिया इंडिया का भी सहयोग लेना कोशिश कर पाए, चाइना भी कहीं कोशिश करे कि अपना एक फुटहोल्ड वहां पे बनाए। सिमिलरली अब जब अमेरिका वहां से हट जाती है धीरे धीरे करके, तो उस जगह पे वहां की जो रीजनल पावर है, क्योंकि इतना तो मिलिटरी स्ट्रांग नहीं है कि अपने दूसरा जो पावर को अपने कंटेस्ट कर सकते हैं, उसको कंटेन कर सकते हैं, इसीलिए उनको जरूरत पड़ता है दूसरा एक्सटर्नल पावर के सहयोग का। तो रासा की जो ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है कि जहाँ पे पावर वैक्यूम हो रहा है, वो अपना किसी भी तरह ये छोटी कंट्री को लेते हुए अपना एक इन्फ्लुएंस बनाए, जैसे अमेरिका पहले करता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रासा इतना तरीका से इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर सकता है। आज का टाइम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है अलग है देन 1960s एंड 70s।
रूसी राष्ट्रपति का सऊदी दौरा कितना महत्वपूर्ण, विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर एके महापात्र। रुख भारत का करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते कल दोपहर 12 बजे के बाद से मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गईं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को 5 अगस्त को हटाया गया था, जिसके बाद से घाटी में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनमें मोबाइल सेवाएं भी शामिल थी। अब जब मोबाइल सेवाएं बहाल हुई हैं, तो घाटी में कहीं उत्साह है तो कहीं झल्लाहट। सुनिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
सजाद अहमद अपने परिवार वालों के साथ सोमवार को 70 दिनों के बाद मोबाइल फोन पर बात कर पाए हैं। वो बीते 70 दिनों से ना अपने घर जा पाए थे और न ही अपने घर वालों से कोई संपर्क कर पाए थे, लेकिन सोमवार को घर वालों के साथ मोबाइल फोन पर बात करने के बाद उनके दिल और दिमाग का बोझ हल्का हो गया है।
बहुत सारा टेंशन था उनके पास, वो सोच रहे थे, बोल रहे थे कि आप ठीक हो, क्या नहीं, मतलब ये ब्लड की जो सर्विस होती है इनमें घर जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए आज मैं घर नहीं जा पाया था, और ऊपर से हड़ताल भी है, गाड़ियाँ भी नहीं।
तो 70 दिन कैसे गुजरे फ़ोन के बगैर,
ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कैसे अल्फाज कैसे लाएंगे अल्फाज, मतलब जिस चीज़ का ज़रूरत होती है तो वो चीज़ अचानक बंद हो जाए, तो इसमें होता है, आप समझ सकते हो।
20 वर्ष की आसिया जान का मोबाइल फ़ोन आज 70 दिनों के बाद बजा है। आसिया एक दूर दराज इलाके से श्रीनगर एक दावत पर आई हुई हैं। वो बहुत खुश थी कि वो अपनों के साथ अब बात कर पा रही हैं।
हम तो बहुत खुश हैं, अपनों से बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं।
फोन के बिना किस तरह दिन कटे वो कहती हैं।
وہ کشمیریوں سے زیادہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اب جو دور رشتہ دار ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بس اور کچھ نہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
غور طلب ہے کہ بیتے 5 اگست کو بھارت سرکار کی اور سے جموں کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں تناؤ برقرار ہے اور کشمیر کے سبھی کاروباری ادارے اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے. سرکار نے بیتی شنیوار کو کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل سیواؤں کو شروع کرنے کی گھوشنا کی تھی. سرکار کا کہنا تھا کہ سوموار کو کشمیر کے 10 ضلعوں میں پوسٹ پیڈ موبائل سیوائیں شروع کی جائیں گی جن کی سنکھیا قریب 40 لاکھ ہے. لداخ کے رہنے والے ڈاکٹر ذاکر نے بھی بیتے 70 دنوں میں سوموار کو پہلی بار اپنے گھر والوں سے موبائل فون پر بات کی اور وہ بہت اتساہت تھے.
ہاں اوبویسلی وہ تو کامن سی بات ہے کہ آپ اپنے فیملی سے گھر والوں سے بات نہیں کر پاتے پچھلے 1-2 مہینے ہو گئے, تو اوبویسلی یہ تو ہنڈرنس ہے ہی. تو ہاں خوشی ہوتا ہے جب ایسے کنیکشنز یا ریسٹور ہوتا ہے. تو
حالانکہ کئی سبسکرائبرز نے اس بات کی شکایت کی کہ سرکاری گھوشنا کے بعد بھی ابھی تک ان کے موبائل فون نہیں چل پائے ہیں جبکہ ان کے موبائل فون پوسٹ پیڈ ہیں. بڑگام کے مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ان کا فون پری آن پوسٹ ہے اور ریچارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو کال نہیں کر پائے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی کو کال نہیں کر پا رہے ہیں. میرا فون مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کسٹمر کیئر سے بات کرے, اور جب میں نے ان کو فون کیا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کا ریچارج ختم ہو گیا ہے. یہ تھے مشتاق احمد کے شبد. بی ایس این ایل پوسٹ پیڈ کے ایک سبسکرائبر غلام نبی 1 گھنٹے سے اپنے موبائل سے کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کال نہیں کر پا رہے تھے.
سر میرے پاس بی ایس این ایل پوسٹ پیڈ ہے لیکن ابھی تک چالو نہیں ہوا ہے.
کچھ گاہکوں کا کہنا ہے کہ جن کے فون نہیں چل رہے ہیں ان کو ریچارج کرنا ہے لیکن وہ ریچارج کیسے کرے جب انٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایک گاہک منظور احمد کہتے ہیں,
رہی اب یہ پوسٹ پیڈ موبائلز کی بات, وہ ریچارج کی بہت بڑی دقت ہو جائے گی جب تک کہ انٹرنیٹ نہیں چلے گا.
کشمیر گھاٹی میں ابھی تک پری پیڈ موبائل سیواؤں کو شروع نہیں کیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سیوائیں بھی بند ہیں. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
اسی مہینے کی 21 کو مہاراشٹر ودھان سبھا چناؤ ہونے ہیں. 2014 کے ودھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کے لیے پارٹی کے ورشٹھ نیتا نتن گڈکری نے جم کر پرچار کیا تھا, لیکن اس بار چناؤ پرچار میں ان کا چہرہ کم اور موجودہ مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس کا چہرہ ادھک نظر آ رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے مہاراشٹر میں موجود بی بی سی سنواداتا ابھیجیت کاملے سے بات کی اور ان سے یہی پوچھا کہ چناؤ پرچار سے غائب کیوں ہے نتن گڈکری.
جی بالکل, ہم سب جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کی راجنیتی میں بھاجپا کے جو نیتا ہیں ان میں جتنا قد دیویندر فڈنویس کا ہے اتنا ہی قد نتن گڈکری کا بھی ہے, اور اب تک جتنے بھی چناؤ مہاراشٹر میں ہوئے ہیں اس میں نتن گڈکری کا چناوی جو پرچار ریلیاں ہوتی تھی وہ زور شور سے کرتے تھے, بڑی سنکھیا میں کرتے تھے اور ہر جگہ چناوی ریلی میں وہ دکھتے تھے. 2014 کی چناؤ ہو یا 2019 کی جو لوک سبھا چناؤ ہے اس میں بھی نتن گڈکری ہمیں سکریہ دکھے تھے, لیکن اس بار نتن گڈکری چناؤ میں اتنے سکریہ نہیں دکھ رہے. ابھی تک ایک تو انہوں نے ریلیز جو ہے وہ دیری سے شروع کی ہے, اور اب تک جو بھی ریلیز انہوں نے کی ہے وہ صرف ادھر میں ناگپور کے علاقے کے آس پاس ہی کی ہے. مہاراشٹر کے جو الگ الگ حصے ہیں وہاں پر ابھی تک ان نتن گڈکری ریلیز نہیں کر پائے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پوسٹرز ہیں بی جے پی کے لگائے ہوئے پوسٹرز میں نتن گڈکری غائب تھے, اب ناگپور میں کچھ پوسٹر جو لگے اس میں بھی نتن گڈکری کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا, دیویندر فڈنویس جی کا دکھائی دے رہا ہے, اسی کو لے کے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں.
اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ نتن گڈکری کے جو کچھ سمرتھک ہیں انہیں اس بار بھاجپا نے ٹکٹ نہیں دیا ہے.
دو ان کے جانے مانے سمرتھک ہیں, جو چندر شیکھر باون کوڑے ہیں وہ منسٹر تھے دیویندر فڈنویس کے منسٹری میں, ان کا ٹکٹ کاٹا گیا ہے جو ناگپور ڈسٹرکٹ میں ہی ان کی کانسٹیٹنسی ہے. دوسرے سدھاکر کوہڑے کر کے جو ناگپور سٹی سے ایم ایل اے تھے جو نتن گڈکری کے سمرتھک مانے جاتے ہیں ان کا بھی ٹکٹ کاٹا گیا ہے. اگر ودھان سبھا چناؤ کی بات کریں تو بی جے پی کے جو ٹکٹ کا بٹوارا ہوا ہے اس میں خاص کر کے دیویندر فڈنویس جو ہے انہوں نے اپنی اچھا سے ہی ٹکٹ دیے ایسا دکھائی دیتا ہے.
نتن گڈکری کا فرنٹ لائن میں نہیں آنا کیا یہ بی جے پی کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہوگا یا پھر بی جے پی کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے؟
فی الحال بی جے پی اس کے اوپر امید لگائے بیٹھی ہے کہ دیویندر فڈنویس 5 سال سے یہاں سی ایم رہ چکے ہیں اور اس لیے ان کو ایک طریقے کا فری ہینڈ دیا جا رہا ہے, اور اس فری ہینڈ دیتے وقت بی جے پی نے شاید نتن گڈکری جی کو سائڈ لائن کیا ہے ایسا دکھائی دے رہے ہیں. अब इसमें फायदे की जो बात है वो उसमें ये फायदा बीजेपी देख रही है कि देवेंद्र फडणवीस के ही हाथ में कमान देके हम कुछ फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है बीजेपी के लिए, खास करके नितिन गडकरी की जो खास करके पैठ है वो नागपुर शहर और पूर्व विदर्भ जो है वहां पे उनको मानने वाले ज्यादा है और उसमें बीजेपी का नुकसान हो सकता है, ये भी एक संभावना है।
जानकारी दे रहे थे अभिजीत कांबले। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या खास है। अखबारों के साथ सृष्टि स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सृष्टि, आज किन खबरों को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है?
जी मानसी, सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों ने, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन सभी अखबारों ने अपने मुख्य पेज पे जो भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पार्टनर एस्थर डेल्फो को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी खबर दी है। और साथ ही में कई अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान और बल्लेबाज सौरव गांगुली हैं उनको जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अध्यक्ष बनाए जाने से जुड़ी खबर है उसको जगह दी है। निर्विरोध चुने जाना उनका तय है, कई अखबार इसके बारे में लिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें उसके सहित कई हिंदी अखबारों ने भी, जैसे हिंदुस्तान ने भी, जो भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी हैं प्रांजल पाटिल, उनको तिरुवनंतपुरम में सहायक कलेक्टर के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है, इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दी है। द हिंदू अखबार की अगर बात करें तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का एक बयान छापा है फ्रंट पेज पे जो कहता है इफ़ द मीडिया कीप्स क्वाइट टेररिज्म विल एंड, अगर मीडिया हम लोग के बारे में जो चुप रहता है तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की उन्होंने एक खबर छापी है। और साथ ही में दैनिक भास्कर की बात करें तो उन्होंने अपने ही जो हेलीकॉप्टर MI-17 को गलती से मार गिराने का मामला था उसमें वायुसेना ने अपने जो 6 अधिकारियों पे कार्रवाई की है उसको भी अपने पहले पेज पे जगह दी है। 2 अधिकारियों को उस पर कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। और बात करें हम हिंदुस्तान अखबार की तो उसने प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली में नए प्रतिबंध, इस तरह की एक हेडिंग दी है अपने पहले पेज में। और ये जो दिल्ली NCR में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको लागू करने से रिलेटेड एक खबर दी है।
शुरू होने से पहले दिल्ली में कोहरा धुंध जो है और प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद सृष्टि श्रीवास्तव। और अब वक्त है महात्मा गांधी पर हमारी विशेष पेशकश का। इस महीने की 2 तारीख को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की विशेष श्रृंखला हम आप तक ला रहे हैं। आप अब तक इस कड़ी की इसमें 4 कड़ियां सुन चुके हैं और अब सुनिए 5वीं कड़ी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय सुना रहे हैं हिंदू और मुस्लिम चाय का किस्सा।
ये किस्सा 1909 का है जब महात्मा गांधी अपनी चर्चित किताब हिंद स्वराज लिख रहे थे। उस समय पोरबंदर में और राजकोट में और दीगर जगहों पर, बंबई में भी जहाँ गांधी रहे थे तब तक, वहाँ एक कहावत कही जाती थी कि मियाँ और महादेव की नहीं बनती, बन ही नहीं सकती, दोनों में बहुत फर्क है। महात्मा गांधी को ये बात कतई समझ में नहीं आती थी कि ये किस आधार पर कहावत बनी है और क्यों कही जाती है इस तरह से, क्योंकि उनका पूरा जीवन, बचपन से उनके तमाम दोस्त अहबाब ऐसे ही थे। उसमें शेख महताब थे जो उनके साथ खेलते भी थे, जिन्होंने गांधी को गोश्त खिलाया था और बल्कि साल भर तक खिलाते रहे थे। जब उनकी पहली नौकरी लगी तो उनको नौकरी देने वाले दादा अब्दुल्ला थे दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ से वो लौट कर आए दांडी मार्च के समय, जो आदमी जिसको गांधी ने तय किया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद कौन दांडी मार्च का नेतृत्व करेगा, वो अब्बास तैयब जी थे। तो महात्मा गांधी को ये बात समझ में नहीं आती थी कि यह मुहावरा क्यों बना, कैसे बना और क्यों लोगों के बीच प्रचलित है। इसकी कोई वजह उनको दिखाई नहीं देती थी। उनका यह कहना था कि तमाम लोग, जब एक बार किसी आदमी ने उनसे पूछ लिया कि साहब टू नेशन थियरी मुस्लिम लीग की है और उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है, इस देश में टू नेशन थियरी हो ही नहीं सकती, और अगर हो सकती है तो 3, 4, 5 नेशन थ्योरी क्यों नहीं है। क्रिश्चियन कहां जाएंगे, जैन का क्या होगा, बौद्धों का क्या करेंगे आप। अगर यही आधार है, धर्म ही आधार है देश बनाने का, तो इन धर्मों ने कौन सा गुनाह किया है? उनके तमाम लोगों से जो वाकफियत थी, जो जान पहचान थी महात्मा गांधी की, वो मुसलमान शब्द पर उनकी सोच को लेकर कि वो चाहते थे कि सब लोग एक साथ रहें, और जब तक ये साथ नहीं होंगे, जब तक सांप्रदायिक एकता नहीं होगी, इस देश को, भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। बल्कि वॉयसराय उस समय वॉवल थे, और कलकत्ता में इनकी जब मुलाकात हुई तो इन्होंने वॉवल से कहा कि देखिए, हम जिस हाल में हैं, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़कर चले जाइए, हम अपने फैसले, अपनी समस्याएं खुद हल कर लेंगे, क्योंकि आप रहेंगे तो आप आग में घी डालने का काम करते रहेंगे। ये और बात थी कि दो नेशन थियरी जिस तरह भी थी, पाकिस्तान बना, यहाँ से तमाम लोग गए, उसके बाद जो हिंसा हुई, जिसको रोकने के लिए कलकत्ता में सोहरावर्दी के साथ महात्मा गांधी की बैठकें, उनके यहाँ ठहरना, ये सब बाद में भी ये सवाल उठाया जाता रहा। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि मैंने इस हिंदू मुस्लिम फसाद की जड़ समाज में कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा थोड़ा सा मुझे दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन ज़्यादा हिंदुस्तान आकर पता चला। एक बार जब गांधी कुंभ मेले में जा रहे थे, हरिद्वार में उस साल कुंभ था 1915 में, तो रास्ते में जब ट्रेन सहारनपुर रुकी तो उन्होंने देखा कि लोग पसीना पसीना है, गला सूख रहा है, पानी नहीं है, लेकिन पानी पीने वाला आता था, पिलाने वाला, और अगर इनको पता चल जाए कि वो मुसलमान है तो उसके हाथ से पानी नहीं पीते थे। हिंदू पानी का इंतज़ार करते थे, मुसलमान पानी नहीं पी सकते थे, जान भले चली जाए। बहुत समय तक गांधी को ये बात सालती रही कि अगर डॉक्टर मुसलमान हो और वो आपको दवा दे तो आप ले लेंगे, लेकिन पानी उसके हाथ का नहीं पियेंगे, इसका मतलब समस्या समाज में है, बाहर है और आपके अंदर है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। ये INA के तमाम लोग, आज़ाद हिंद फौज के तमाम लोग जब गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चलने वाला था, ये सब लोग रेड फोर्ट में बंद थे, तो गांधी उनसे मिलने गए, और इन्होंने पाया कि जो बात इन्होंने वॉवल से कलकत्ता में कही थी कि आपके रहते एकता नहीं हो सकती, वो कितनी सच थी। ये जब उन सिपाहियों ने, आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने गांधी को बताया कि साहब यहाँ सुबह हाँक लगती है कि हिंदू चाय तैयार है, मुसलमान चाय अभी आने वाली है, तो गांधी ने पूछा आप क्या करते हैं अगर आपको हिंदू चाय दी जाए और उनको मुसलमान चाय दी जाए। उन्होंने कहा हमने एक बड़ा सा डिब्बा ले रखा है, बर्तन, और उसमें हिंदू चाय मुसलमान चाय मिला देते हैं और उसके बाद बांट के पी लेते हैं। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के काम करने के ढंग की, हिंसा पर जो उनका भरोसा था, उस पर फौज के गठन और फौज के जरिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, कई बार आलोचना की थी, लेकिन लाल किले से लौटने के बाद गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सुभाष बोस एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान एक पूरा संगठन खड़ा करना और उसमें छुआछूत और हिंदू मुसलमान का भेद मिटा देना है, इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता।
महात्मा गांधी से जुड़े दिलचस्प किस्सों की इस कड़ी पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सृष्टि श्रीवास्तव से।
BBC समाचार। निचले सदन में बहुमत प्राप्त करने के बाद पोलैंड की दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी दूसरी बार जीतकर सत्ता में आ रही है। हालांकि पार्टी ने कम शक्तिशाली ऊपरी सदन में अपना बहुमत खोया है। फिक्शन के लिए इस साल का बुकर पुरस्कार दो लेखकों को दिया गया है, कैनेडियन लेखक मार्गरेट एटवुड और ब्रिटिश लेखक बर्नाडाइन एवरिस्टो के बीच इस पुरस्कार को विभाजित किया गया है। मेक्सिको के प्रांत मिशिगन में बंदूकधारियों के हमले में 14 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है, कई अन्य घायल हुए हैं। कैटलोनिया के दंगारोधी पुलिस दस्ते की बार्सिलोना हवाई अड्डे पर प्रदर्शनकारियों के साथ कई झड़पें हुई हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।